भाग 11 सरकार के अंग न्यायपालिका। न्यायपालिका का महत्व। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो आवश्यकता अनुसार कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों के भंग करने वालों को उचित दंड देती है। अतः शासन सत्तात्मक संगठन को बनाए रखने के लिए न्याय विभाग का रहना सर्वथा अनिवार्य है। कहा जाता है कि यदि किसी देश में विधायिका और कार्यपालिका बहुत अच्छी हो पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ना हो तो उस देश के संविधान का अधिक मूल्य नहीं रह जाता। यह देखने के लिए कि राज्यों के कानून का समुचित पालन हो रहा है या नहीं अथवा कानूनों के भंग करने वालों को दंड के लिए सर्वथा एक निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर गार्नर ने ठीक ही लिखा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था ना हो। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों या स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। यदि किसी राज्य में उचित और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था नहीं है तो वह अधिकारों की रक्षा संभव नहीं। रॉले ने ठीक ही कहा है कि अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णय देने के लिए अपराधियों को दंड देने के लिए तथा निर्बलों की अत्याचार से रक्षा करने के लिए न्याय विभाग नितांत आवश्यक है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश में विधि के शासन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है और कोई इसके ऊपर नहीं। कानून की नज़र में राजा रंक सभी बराबर हैं और सभी को समान अपराध के लिए समान दंड मिलता है। लेकिन न्यायपालिका तथा न्याय विभाग की अनुपस्थिति में वे बातें बेकार मालूम होती हैं। लॉस्की ने लिखा है कि जब हम यह जानते हैं कि राष्ट्र राज्य किस प्रकार अपने यहाँ न्याय करता है, तब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वह नैतिक चरित्र के किस स्तर पर है। ब्राइस ने लिखा है कि किसी सरकार की उत्तमता की कसौटी उसके न्याय विभाग की कुशलता है, क्योंकि साधारण नागरिक के हित तथा सुरक्षा के हित में यह भावना आवश्यक है कि उनके साथ उचित न्याय शीघ्र किया जाए। फिर ब्राइस के ही शब्दों में, यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना दूर गहन कर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संक्षेप में, एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय विभाग या न्यायपालिका के बिना किसी सभ्य संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। न्यायपालिका के कार्य। वर्तमान युग में न्यायपालिका के निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। पहला, कानून की व्याख्या करना। विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में देश के कानूनों की व्याख्या करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। इसी सिलसिले में वह विभिन्न कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है। न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याओं को कानून के समान ही माना जाता है। दूसरा, न्याय करना और अपराधियों को दंड देना। न्यायपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना है। यह व्यक्तियों के बीच तथा व्यक्ति और राज्य के बीच झगड़ों का फैसला करती है। यह मुकदमों के दोनों पक्षों से अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए परमाणु उपस्थित करने को कहती है और गवाहों का बयान सुनती है। अंत में सभी तथ्यों को जानकर उन पर मुकदमे से संबंधित कानूनों को लागू करती है और उसी रोशनी में अपना निर्णय देती है। तीसरा, विधायन संबंधी कार्य या कानूनों का निर्माण करना। विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के जिम्मे रहता है, फिर भी मुकदमे के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। उन व्याख्याओं में वह स्वयं ही कुछ कानूनों का निर्माण कर देती है। न्यायालयों में कभी कभी ऐसे मुकदमे आते हैं जिनमें कानूनों की व्याख्या सामान्य बुद्धि और विवेक के आधार पर करते हैं और उन मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं। ये निर्णय बाद में दृष्टांत या नजीरे हो जाते हैं। इन दृष्टांतों को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानूनों या मुकदमे का कानून कहते हैं। चौथा, नागरिकों के मूल अधिकार एवं संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका को नागरिकों के मूल अधिकार और देश के संविधान का रक्षक माना जाता है। संघ राज्य में संविधान ही सर्वोच्च होता है और उसकी रक्षा का भार वहाँ की न्यायपालिका के ऊपर रहता है। न्यायपालिका को यह अधिकार रहता है कि वह संघ व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। यदि वह कानून संविधान के अनुकूल नहीं बनाया गया है, संघात्मक शासन के अंतर्गत न्यायपालिका संघ और इकाइयों के पारस्परिक विवादों, इकाइयों के आपसी झगड़ों, उनके अधिकार क्षेत्र एवं अन्य मतभेदों के पैदा होने पर अपना निर्णय देती है। पांचवा, कानूनों एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। साधारणतः व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा अधिकार को दो ओर से क्षति पहुंचने की संभावना रहती है, एक अन्य व्यक्तियों की ओर से और दूसरा स्वयं राज्य की ओर से। अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है। न्यायालय के कई प्रकार के आदेश लेख जारी करता है जिसमें पांच लेख अत्यधिक प्रमुख हैं। प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। लेखों और आदेशों के अलावा न्यायालय न्यायिक आदेश भी जारी करता है। यदि कभी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसके किसी अधिकार को किसी प्रकार की क्षति होने वाली है तो वह न्यायालय से प्रार्थना करके न्यायादेश जारी करा सकता है। छठा, मतगणना कार्य तथा परामर्श देना। अनेक राज्यों की न्यायपालिका वहां के राज्याध्यक्ष को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देती हैं। इंग्लैंड में न्यायालयों से किसी मामले के संबंध में औपचारिक निर्णय मांगने की प्रथा बहुत प्रचलित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पनावा, स्वीडन आदि देशों में यह प्रथा पाई जाती है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। छठा, प्रशासनिक कार्य। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को स्थानीय पदाधिकारियों एवं अधिशंस कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा न्यायालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार होता है। आठवां, विविध कार्य। विधि कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका के निम्न कार्य सम्मिलित हैं। सार्वजनिक संपत्ति के लिए न्यायधारियों एवं नाबालिगों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति, वसीयतनामों को प्रमाणित करना, मरे हुए लोगों की जायदादों का प्रबंध करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हैमिल्टन ने लिखा है कि किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है। किसी लोकतंत्र शासन में एक स्वतंत्र एवं एक निष्पक्ष न्यायपालिका सर्वथा अनिवार्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमारा आशय यह है कि न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करने में और न्याय प्रदान करने में अपने विवेक का निर्बाध प्रयोग करना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के प्रभावों एवं शक्तियों से, राजनीतिक दलों के प्रभावों से, देश के अन्य किसी प्रकार के संगठन के प्रभाव से, किसी समूह विशेष अथवा अपने व्यक्ति विशेष के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त तथा स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे वातावरण के लिए जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे, कुछ उपायों का सहारा लिया गया है जिन्हें नीचे दिया जा रहा है। पहला, न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीश के पद पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो उस पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं, सभी गुणों से संपन्न हैं। एक योग्य न्यायाधीश को पारदर्शी, विद्वान, निष्पक्ष, सच्चा चरित्र एवं तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए। उसे अपने विचारों से पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हुए किसी भी प्रकार के बाहरी विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उत्तम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार वाले न्यायाधीश ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन प्रकार काम में लाए जाते हैं। पहला, जनता द्वारा निर्वाचन। दूसरा, व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनाव। तीसरा, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। लॉस्की ने कहा है कि नियुक्ति के जितने भी तरीके हैं उनमें जनता के निर्वाचन द्वारा नियुक्ति सबसे बुरी है। जनता द्वारा चुने गए न्यायाधीश कभी भी निष्पक्ष, ईमानदार और सम्मानित नहीं हो सकते। इस पद्धति के चलते न्यायाधीशों को राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। जनता द्वारा निर्वाचन करने की पद्धति में कुशल राजनीतिज्ञ जनता को भुलावा देकर न्यायाधीश बन जाते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति व्यवस्थापिका द्वारा चुनाव करके होती है। यह प्रथा स्विट्जरलैंड, रूस और अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है, लेकिन यह प्रणाली भी गलत और दोषपूर्ण ठहराई जा चुकी है। इस पद्धति के चलते न्यायाधीशों का निर्वाचन उनकी विशेष योग्यता एवं उनकी न्यायिक प्रवृत्ति के आधार पर ना होकर राजनीतिज्ञ और दलबंदी की भावना के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त यह पद्धति शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के प्रतिकूल है और इसमें यह आशंका रहती है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के हाथ की कठपुतली न बन जाए। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति का तीसरा तरीका है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के प्रधान या राष्ट्रपति द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है और निम्न न्यायाधीशों की नियुक्ति विभागीय सचिव करते हैं। इस पद्धति में दल प्रथा की बुराइयां नहीं घुसने पाती। नियुक्तियां राजनीतिक विचारों के आधार पर ना होकर गुणों के आधार पर होती है। वर्तमान समय में यह पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन यह भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं कही जा सकती। कार्यपालिका द्वारा भी की गई नियुक्तियां दलीय दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व पक्षपात से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रहती। कार्यपालिका द्वारा की गई न्यायाधीशों की नियुक्तियां आज मुख्यतः दल की स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित होकर होती है। इस दोष को दूर करने के लिए लॉस्की ने एक सुझाव पेश किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कार्यपालिका के द्वारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी नियुक्ति न्यायाधीशों की स्थायी समिति की राय से न्याय मंत्री द्वारा होनी चाहिए। तीसरा, न्यायाधीशों की कार्यावधि। न्यायाधीश के पद की अवधि जब तक समुचित रूप से निश्चित नहीं रहती तब तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं रहती। पदावधि छोटी होने से कोई भी न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम रक्षा न्यायाधीशों के लंबे कार्यकाल द्वारा हो सकती है। अतः आज सर्वानुविधि यही है कि कोई भी न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने की आयु तक अपने पद पर बना रहे, बशर्ते कि वह सदाचार व व्यवहार युक्त हो। चौथा, न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व के लिए यह भी जरूरी है कि न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, परंतु यह एक आवश्यक शर्त है कि न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था सरल नहीं होनी चाहिए। उनकी बर्खास्तगी किसी व्यक्ति के इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक प्रजातांत्रिक देशों में न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की बड़ी कठिन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। उदाहरणतः इंग्लैंड और भारत में किसी न्यायाधीश को अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद की दोनों सभाएं वहां की मुख्य कार्यपालिका राजा अथवा राष्ट्रपति से लिखित रूप से इस बात की मांग ना करें। अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वहां की कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा आरोपित एवं समर्थित महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार पद से हटाने की जटिल एवं कठिन प्रणाली न्यायाधीशों के पद की गारंटी होती है। पांचवा, न्यायाधीशों के वेतन न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि एक न्यायाधीश की उसकी स्थिति एवं गौरव के अनुरूप निश्चित एवं पर्याप्त वेतन मिले। हैमिल्टन ने बहुत ही ठीक लिखा है कि यह मानव स्वभाव है कि जो मनुष्य अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है उसके पास संकल्प शक्ति का भी बड़ा बल होता है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए न्यायाधीशों के अच्छे वेतन का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उसके वेतनों में उसके पदावधि काल में परिवर्तन ना हो। चौथा, न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रक्षार्थ यह भी अति आवश्यक है कि इसके कार्यों की कार्यपालिका के कार्यों की से पृथक रखा जाए। यदि एक ही व्यक्ति के जिम्मे कानून बनाने, उसे लागू करने और भंग करने वालों को दंड देने का अधिकार दे दिया जाए तो स्पष्ट न्याय की हत्या हो जाएगी। इन शर्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तों भी हैं, जैसे न्यायाधीश की राजनीतिक बातों से दूर रहना चाहिए, उन्हें किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए।